श्लोक आरंभ गुर्वी क्षेणो क्रमेण लद्भी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां प्रसंग संप्रति सज्जनानां दुर्जनानां च मैत्री स्वरूपं निरूपयति ग्रंथकारः आरब्ध गुर्वीति अन्वयः दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव खल सज्जनानां मैत्री आरंभ गुर्वी क्रमेण छायणी पूरा लद्वी पश्चात च वृद्धि मति व्याख्या दीनस्य दिवसस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना पूर्वार्ध परान भेदेन पृथक पृथक रूपा छाया अनातपः इव यथा खल सज्जनानां दुष्टः सत्पुरुषाणां मैत्री मित्रता आरंभ गुर्वी आदि महति प्रारंभे वर्धमाने त्यर्थ क्रमेण कालक्रमानुसारं क्षयणी क्षीयमाणा पूरा प्रथमं लद्वी स्वल्प रूपा पश्चात च अनंतरम च वृद्धिमति वर्धमाना भवतीति शेष सरलार्थः दिवसस्य पूर्वार्ध पराहण भेदेन पृथक पृथक रूपा छायेव दुष्ट सत्पुरुषाणां मित्रता प्रारंभे वर्धमाना कालक्रमानुसारं क्षीयमाणा प्रथमं स्वल्प रूपांतरं च वर्धमाना भवति टिप्पणी पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना पूर्वार्धंच परार्धंच पूर्वार्ध परार्धे तयो भिन्ना खल सज्जनानां खलाश्च सज्जनाश्च खल सज्जनास्तेषां आरभ गुर्वी आरंभे गुर्वी आरंभ गुर्वी श्लोके अस्मिन् स्यादिन्द्र वज्रा यदितौ जगौगः उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ इति च लक्षणयोर्मिश्रितादुपजाति वृत्तम् तलक्षणम् यथा अनंतरोदी ऋतलक्ष्मीभाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जाति श्विदमेव नाम इति अपि चात्रोपमा यथा संख्ययोः संकरः उपमा यथा साम्यं वाच्यं वैधर्म्यं वाक्यैकम् उपमा द्वयोः इति यथा संख्यम् अलंकारो यथा यथा संख्यम् नुद्देश उद्दिष्टानां क्रमेण यत् इति प्रातः कालात् द्वादश वादन पर्यन्तं दिनस्य पूर्वार्ध पूर्वाह्णो वा भवति द्वादश वादनान्तरं सायंकाल पर्यन्तं दिनस्य परार्धं पराह्णो वा भवति पूर्वाह्णे प्रारभे छाया बृहद्रूपा भवति पुनश्च कालक्रमेण क्षीयमाणा सति द्वादश वादने स्वल्परूपा भवति अपि तु समाप्ति गच्छति प्रारंभे दुर्जनानां मैत्री बृहद्रूपां भवति पुनश्च कालक्रमेण स्वल्परूपा भवति अपितु सप्ताप्ति गच्छति यतो हि दुर्जना स्वस्वार्थसिद्ध्यर्थ सिद्धमेवान्यै सह मैत्री कुर्वन्ति प्रारंभे तेषां मैत्री बृहद्रूपा भवति यदा स्वस्वार्थसिद्धि पूर्णतां गच्छति तदा तेषां मैत्री कालक्रमेण क्षीयमाणा सति समाप्ति गच्छति तथैव पराह्णे प्रारंभे छाया स्वल्परूपा भवति पुनश्च कालक्रमेण प्रवर्धमाना सति सायंकाले बृहद्रूपा भवति छायेव सज्जनानां मैत्री प्रारंभे स्वल्परूपा भवति पुनश्च कालक्रमेण बृहद्रूपा भवति अपि तु छायैव तिष्ठति छायेव प्रारंभे सज्जनानां मैत्री स्वल्परूपा भवति पुनश्च कालक्रमेण बृहद् रूपा भवति अपि तु मैत्री मात्रं तिष्ठति यतो हि सज्जनाः स्वभावानुसारमन्यै सपरिचय वशान् मैत्री कुर्वन्ति अतः तेषां मैत्री प्रारम्भे स्वल्परूपा भवति यदा विशिष्टपरिचयो भवति तदा तेषां मैत्री कालक्रमेण प्रवर्धमाना सति बृहद्रूपा भवति अपि तु मैत्री पात्रं तिष्ठति एवं तयोः परस्परं भेदो वर्तते हिंदी प्रसंग अब सज्जन और दुजनों की मित्रता के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं ग्रंथकार हिंदी व्याख्या दीनस्य दिन के पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में भिन्न भिन्न रूप से रहने वाली छाया इव छाया के समान खल सज्जना नाम दुर्जनों और सज्जनों की मैत्री मित्रता आरंभ गुर्वी आरंभ में बड़ी क्रमेण क्रम से क्षायणी क्षय होने वाली च तथा पूरा पहले लब्धवी छोटी पश्चात बाद में वृद्धमति बढ़ने वाली होती है हिंदी अनुवाद दिन के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में भिन्न भिन्न रूप से रहने वाली छाया के समान दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता आरंभ में बड़ी क्रम से क्षय होने वाली तथा पहले छोटी बाद में बढ़ने वाली होती है। विमर्श प्रातः काल से लेकर 12 बजने तक का समय दिन का पूर्वार्ध कहलाता है, इसे पूर्वाह्न भी कहते हैं। 12 बजे लेकर सायंकाल तक का समय दिन का परार्ध या उत्तरार्ध कहलाता है, इसे पराह्न भी कहते हैं। पूर्वाह्न के प्रारंभ में छाया बड़ी होती है, फिर क्रम से घटती हुई 12 बजे अत्यंत छोटी हो जाती है। इतना ही नहीं बल्कि समाप्त हो जाती है। छाया के समान दुर्जनों की मित्रता भी प्रारंभ में बड़ी होती है, फिर क्रम से अत्यंत छोटी बन जाती है। इतना ही नहीं बल्कि समाप्त हो जाती है, क्योंकि दुर्जन अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए शीघ्र ही दूसरों के साथ मित्रता कर लेते हैं। जब स्वार्थ की सिद्धि हो जाती है तब उनकी मैत्री कालक्रम से घटती हुई अंत में समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार पराह्न के प्रारंभ में छाया छोटी होती है, फिर क्रम से बढ़ती हुई सायंकाल अत्यंत बड़ी हो जाती। इतना ही नहीं बल्कि असीमित छाया मात्र ही रहती है। छाया के समान सज्जनों की मित्रता भी प्रारंभ में छोटी होती है, फिर क्रम से बड़ी हो जाती है। इतना ही नहीं उस समय मित्रता मात्र रहती है, क्योंकि सज्जन अपने स्वभाव के अनुसार दूसरों के साथ परिचित हो जाने से ही मित्रता कर लेते हैं। इसलिए उनकी मित्रता प्रारंभ में छोटी होती है, जब विशेष परिचय हो जाता है तब उनकी मित्रता कालक्रम से बढ़ती हुई अत्यधिक बड़ी हो जाती है। इतना ही नहीं बल्कि उस समय असीमित मित्रता मात्र रह जाती है। इस प्रकार से दुर्जन एवं सज्जनों की मित्रता में परस्पर भेद है। श्लोक मृग मीन सज्जनानां तृण जल संतोष विहित वृत्तिनां लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। प्रसंग निष्कारणमेव दुर्जनाः शत्रुताया आचरणं कुर्वन्ति त्याहोदाहरण मुखेन ग्रंथकारः। अन्वय जगति लुब्धक धीवर पिशुनाः तृण जल संतोष विहित वृत्तिनां मृग मीन सज्जनानां निष्कारण वैरिणः। व्याख्या जगति संसारे लुब्धक धीवर पिशुनाः व्याध कैवर्त दुर्जनाः क्रमेणेति शेष तृण जल संतोष विहित वृत्तिनाम घास सलिल तृप्तिकृत वर्तनानाम मृग मीन सज्जनानाम हरिण मत्स्य सत्पुरुषाणाम निष्कारण वैरिणः निर्हेतुक शत्रवः संतिति शेष सरलार्थ संसारे व्याध कैवर्त दुर्जनाः क्रमेण घास सलिल तृप्तिकृत वर्तनानाम हरिण मत्स्य सत्पुरुषाणाम निर्हेतुक शत्रवः सन्ति। टिप्पणी लुब्धक धीवर पिशुनाः लुब्धकाश्च धीवराश्च पिशुनाश्चेति ते लुब्धक धीवर पिशुनाः। तृण जल संतोष विहित वृत्तिनाम तृणम च जलम च संतोषश्चेति ते तृण जल संतोषाः तैः विहिता वृत्तिः एषां ते तृण जल संतोष विहित वृत्तयस्तेषां। मृग मीन सज्जनानां मृगाश्च मीनाश्च सज्जनाश्चेति ते मृग मीन सज्जनास्तेषां निष्कारण वैरिणः नास्ति कारणं यस्य तत् निष्कारणं निष्कारणं यथा स्यात् तथा वैरिण इति ते निष्कारण वैरिणः। श्लोके अस्मिन् आर्यावृत्तं तल्लक्षणं यथा यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सा आर्या इति अपि चात्र यथा संख्यम अलंकारस्थ लक्षणम यथा यथा संख्यम अनुद्देश्य उद्दिष्टानां क्रमेण यत इति व्याधो मृगस्य स्वाभाविक शत्रुस्ति कैवर्थ मत्स्यस्य स्वाभाविकः शत्रु दुर्जनः सज्जनस्य च स्वाभाविकः शत्रुरस्ति कारणं विनयव न को अपि परय सह शत्रुताया आचरणं करोति। अत्र तु कारणं विनयव शत्रुताया आचरणं दृश्यते। मृगतृष्णेन स्वजीविकायाः निर्वहनं करोति तेन व्याधस्य न कापि हानिर्भवति तथापि व्याधस्तस्य स्वाभाविकः शत्रुरस्ति। मत्स्यः सलिलेन स्वजीविकायाः निर्वहनं करोति कैवर्तस्य न कापि हानिर्भवति तथापि कैवर्तस्य स्वाभाविकः शत्रुरस्ति। तथैव सज्जनः संतोषेण स्वजीविकायाः निर्वहनं करोति तेन दुर्जनस्य न कापि हानिर्भवति तथापि दुर्जनस्तस्य स्वाभाविकः शत्रुरस्ति। व्यक्तिः स्वप्रकृतं त्यक्तुं कदापि सक्षमो न भवति दुर्जनस्येयं प्रकृतिरस्ति यत् तदनुसारेण सज्जनः सहावश्यमेव शत्रुताया आचरणं करिष्यति। अतः दुर्जनः सज्जनानां स्वाभाविक शत्रुरस्ति। हिंदी प्रसंग। बिना किसी कारण के दुर्जन शत्रुता का आचरण करते हैं, इसी बात को उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं ग्रंथकार। मृग मीन सज्जनानाम इति हिंदी व्याख्या। जगत संसार में लुब्ध धीवर पिशुनाह शिकारी मछुआ तथा दुर्जन क्रम से तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम घास पानी तथा संतोष से जीविका निर्वाह करने वाले मृग मीन सज्जनानाम हरिण मछली तथा सज्जनों के निष्कारण वैरिणः बिना कारण के शत्रु है। हिंदी अनुवाद। संसार में शिकारी मछुआ तथा दुर्जन क्रम से घास पानी तथा संतोष से जीविका निर्वाह करने वाले हरिण मछली तथा सज्जनों के बिना कारण के शत्रु हैं। विमर्श। शिकारी मृग का मछुआ मछली का तथा दुर्जन सज्जन का स्वाभाविक वैरी है। बिना कारण के कोई भी किसी से वैर नहीं करता है। मृग घास खाकर अपना जीविका निर्वाह करता है। शिकारी की कुछ भी हानि नहीं करता है, फिर भी मृग का शिकारी स्वाभाविक शत्रु है। इसी प्रकार मछली पानी पीकर जीविका निर्वाह करती है, मछुए की कुछ भी हानि नहीं करती, फिर भी मछुआ उसका स्वाभाविक शत्रु है। इसी प्रकार दुर्जनों की स्वाभाविक शत्रुता सज्जनों से होती है, जबकि सज्जन संतोष से अपनी अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। दुर्जनों की कुछ भी हानि नहीं करते हैं। जिसकी जो प्रकृति है उसे वह कभी छोड़ नहीं सकता है। दुर्जनों की प्रकृति ही है कि वे सज्जनों से शत्रुता करें। श्लोक। वांछा सज्जन संगमे पर गुणे प्रीतिर गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनम स्वयोषिति रतिर्लोकापवादात् भयम् भक्ति शूलिनी शक्तिरात्म दमने संसर्ग मुक्ति खले एश्वेते निवसन्ति निर्मल गुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः। प्रसंगः। संप्रति निर्मल गुणानां वर्णनं कुर्वन् तद्युक्तान् पुरुषान् पूज्यत्वेन स्वीकरोति ग्रंथकारः। अन्वयः। सज्जन संगमे वांछा परगुणे प्रीति गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनम् स्वयोषिति रति लोकापवादात् भयम् शूलिनी भक्ति आत्मदमने शक्ति खले संसर्ग मुक्ति एते निर्मल गुणाः एषु वसन्ति तेभ्यः नरेभ्यः नमः। व्याख्या। सज्जन संगमे सत्पुरुष संसर्गे वांछा इच्छा परगुणे अन्य दया दाक्षिण्यादौ प्रीति स्नेह गुरौ पूज्यजने नम्रता विनयः विद्यायां ज्ञानार्जने व्यसनम् अनुरागः स्वयोषिति निज भार्यायां रति प्रेम लोकापवादात् लोक निंदायाः भयं भीति शूलिनी शिवे भक्ति परानुरक्ति आत्मदमने चित्त निग्रहे शक्ति सामर्थ्यम खले दुर्जने संसर्ग मुक्ति संपर्क त्यागः एते अभि निर्मल गुणाः शुद्ध गुणाः एषु येषु मनुष्येषु वसन्ति स्थिताः सन्ति तेभ्यः शुद्ध गुणयुक्तेभ्यः नरेभ्यः मनुष्येभ्यः नमः नमस्करोस्तु ते पूज्या इत्यर्थः सरलार्थः। सत्पुरुष संसर्गे इच्छा अन्य गुणे स्नेह पूज्यजने विनयः ज्ञानार्जने अनुरागः निज भार्यायां प्रेम लोक निंदायाः भीति शिवे परानुरक्ति चित्त निग्रहे सामर्थ्यम दुर्जने संपर्क त्यागो मे शुद्धा गुणाः एषु मनुष्येषु स्थिताः सन्ति तेभ्यो मनुष्येभ्यो नमस्कारोस्तु। टिप्पणी। सज्जन संगमे सज्जनानां संगमः सज्जन संगमस्तस्मिन् परगुणे परेषां गुणः परगुणस्तस्मिन् स्वयोषिति स्वस्य योषित स्वयोषित तस्याम लोकापवादात् लोकस्यापवादः लोकापवादस्तस्मात् आत्मदमने आत्मनः दमनम् आत्मदमनम् तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष संसर्ग मुक्ति संसर्गस्य मुक्ति संसर्ग मुक्ति षष्ठी तत्पुरुष निर्मल गुणा नास्ति मलम येषां ते निर्मलाः बहुव्रीहि निर्मलाश्च ते गुणाः निर्मल गुणाः कर्मधारयः। श्लोके अस्मिन् शार्दूल विक्रीडितं वृत्तं तल्लक्षणं यथा सूर्यास्वैर् मसजस्तताः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितं इति हिंदी प्रसंग। अब निर्मल गुणों का वर्णन करते हुए उससे युक्त मनुष्य की श्रेष्ठता को बतला रहे हैं ग्रंथकार। हिंदी व्याख्या। सज्जन संग में सज्जनों की संगति में वांछा इच्छा पर गुड़े दूसरों के गुण में प्रीति स्नेह गुरु गुरु जन में नम्रता विनय विद्यायाम ज्ञानार्जन में व्यसनम अनुराग स्वयोषिति अपनी भार्या में रति प्रेम लोकापवादात लोक निंदा से भयम डर शूलिन शिव में भक्ति परानुरक्ति आत्मदमने चित्त के निग्रह में शक्ति सामर्थ्य खले दुर्जन में संसर्ग मुक्ति संपर्क का त्याग एते ये निर्मल गुणा शुद्ध गुण। ये शु जिनमें बसंत स्थित हैं तेभ्य उन्नरेभ्य मनुष्यों के लिए नमः नमस्कार है अर्थात निर्मल गुणों से युक्त पूज्य है। हिंदी अनुवाद। सज्जनों की संगति में इच्छा दूसरों के गुण में स्नेह गुरुजन में विनय विद्या में व्यसन अपनी भार्या में प्रेम लोक निंदा से डर शिव में भक्ति चित्त के निग्रह में सामर्थ्य दुर्जन में संपर्क का त्याग ये शुद्ध गुण जिनमें स्थित हैं उन मनुष्यों के लिए नमस्कार है। श्लोक। विपदि धैर्यम यथाभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसने श्रुतौ। प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मानां प्रसंग इदानीं स्वाभाविकं लक्षणं सज्जनानां निरूपयति ग्रंथकारः। अन्वय। विपदि धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि अभिरुचिः श्रुतौ च व्यसनम् हि इदं महात्मानं प्रकृति सिद्धं। व्याख्या। विपदि विपत्ति काले धैर्यं धीरता अथ अपि च अभ्युदय अभिवृद्धौ संपदित्यर्थ क्षमा सहनशीलता सदसि सभायां वाक्पटुता वाग्मित्वं युधि युद्धे विक्रमः पराक्रमः यशसि कीर्तौ अभिरुचिः लालसा श्रुतौ च वेदे च व्यसनम् अनुरागः हि निश्चयेन इदम् एतत् पूर्वोक्तं सर्वं महात्मानां सज्जनानां प्रकृतिसिद्धं स्वभावनिष्पन्नम् अस्तित्वशेषः। सरलार्थ। विपत्ति काले धीरता अपि चाभिवृद्धौ सहनशीलता सभायां वाग्मित्वं युद्धे पराक्रमः कीर्तौ लालसा वेदे चारनुरागः निश्चयेन तत्सर्वं सज्जनानां स्वभाव निष्पन्नमस्ति। टिप्पणी। वाक्पटुता वाचः पटुता वाक्पटुता प्रकृतिसिद्धं प्रकृत्या सिद्धमिति प्रकृतिसिद्धं। श्लोके अस्मिन् द्रुतविलम्बितं वृत्तं लक्षणं यथा द्रुतविलम्बित माहनभौ भरौ इति हिन्दी प्रसंग। अब सज्जनों के स्वाभाविक लक्षण का निरूपण कर रहे हैं। हिंदी व्याख्या। विपदि विपत्ति में धैर्यम धीरता अथ और भी अभ्युदय अभिवृद्धि में क्षमा सहनशीलता सदसि सभा में वाक्पटुता वचन चातुर्य युधि युद्ध में विक्रमः पराक्रम यशसि कीर्ति में अभिरुचि लालसा च तथा श्रुतौ वेद में व्यसनम अनुराग ही निश्चित रूप से इदम यह सब महात्मानां महापुरुषों के प्रकृति सिद्धम स्वभाव से सिद्ध है अर्थात स्वाभाविक गुण है। हिंदी अनुवाद। विपत्ति में धीरता और भी अभिवृद्धि में क्षमा सभा में वचन चातुर्य युद्ध में पराक्रम कीर्ति में लालसा तथा वेद में अनुराग यह सब महापुरुषों के स्वभाव सिद्ध हैं। श्लोक। प्रदानम प्रछन्नम गृहमुपगते संभ्रम विधि प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृतेह अनुत्सेको लक्ष्म्या मनभि भवगंधा परकथा सतां केनो दिष्टं विषम मसिधारा व्रतमिदं प्रसंगः। संप्रति प्रकारा तरेण सज्जनानां स्वाभाविकं चरितं दर्शयति ग्रंथकारः। अन्वयः। प्रदानं प्रछन्नं गृहं उपगते संभ्रम विधि प्रियं कृत्वा मौनम अपि च सदसि उपकृतेह कथनम् लक्ष्म्याम् अनुत्सेकः परकथा अनभि भवगन्धाः इदं विषमम् असिधारा व्रतम् सताम् केन उद्दिष्टम्। व्याख्या। प्रदानम् सत्पात्रे धनादि वितरणम् प्रच्छन्नम् अप्रकाशम् गुप्तमित्यर्थः गृहम् गेहम् उपगते आगते अतिथौ इति शेष। संभ्रम विधि सत्कार विधानम प्रियम अभिष्टम परस्येति शेष कृत्वा विधाय मौनम मूक भाव तस्या प्रकाशनमित्यर्थ अपि च अन्य च सदसि सभायाम उपकृते उपकारस्य परकृतोपकारस्येत्यर्थ कथनं संगीकीर्तनं प्रकाशनमित्यर्थ लक्ष्म्यां संपदि अनुत्सेकः अगर्वः परकथा अन्य चरित कथनानि अनभिभव गंधा आक्षेप लेश शून्याः इदम् एतत् विषमं दुष्करम् असिधारा व्रतम् खड्गधारेव तीक्ष्णतरो नियमः सतां सज्जनानां केन उद्दिष्टम् केन उपदिष्टम् न केनापि यतो हि सर्वमिदं तेषां स्वभावसिद्धमेवास्ति सरलार्थः सत्पात्रे धनादि वितरण प्रकाशं गेहं संप्राप्ते अतिथौ सत्कार विधानं परस्याभीष्टं विधाय मूकभावः अन्यच्च सभायां परकृतोपकारस्य संकीर्तनं संपदि गर्वराहित्यं अन्यचरितकथनानि निन्दालेशशून्यानि एतद् दुष्करं खड्गधारेव व्रतं सज्जनानां केनोपदिष्टं न केनापि अपि तु प्रकृतिसिद्धमेवास्ति टिप्पणी संभ्रम विधि संभ्रमस्य विधि संभ्रम विधि अनुत्सेक न उत्सेक अनुत्सेक न तत्पुरुष पर कथा परस्य कथा पर कथा अनभिभव गंधा अभिभवस्य गंध अभिभव गंध षष्ठी तत्पुरुष नास्ति अभिभव गंध या सुता बहुव्रीहि असिधारा व्रतम असेह धारा असिधारा असिधारा इव व्रतम असिधा असिधारा व्रतम उपमीत समास श्लोके अस्मिन् शिखरणी वृत्तम लक्षणम यथा रसह रुद्रह शिन्ना यमन सबल लागह शिखरणी इति अपिचात्र समुच्चयालंकारस्त लक्षणम यथा समुच्चयो अयमेकस्मिन् सति कार्यस्य साधके खले कपोति कान्यायात तस्करः स्यात् परोपि चेत गुणो क्रिये वा युगपत स्याताम यद्वा गुण क्रिये इति सज्जनाः सत्पात्रे धनादि वितरणं कृत्वा सर्वत्र न प्रचारं कुर्वन्ति गृहं समुपागते अतिथौ तस्य सत्कारं कुर्वन्ति सभायां परकृतोपकारस्य प्रकाशनं कुर्वन्ति संपदि गर्वन कुर्वन्ति परचरित कथां निन्दालेश राहित्यं कुर्वन्ति सज्जनानामयं नियमः खड्गधारेव तीक्ष्णतरो भवति नियमो अयं केनापि नोपदिष्टः अपि तु सज्जनानां प्रकृतिसिद्धो भवति हिंदी प्रसंग अब्र प्रकारांतर से सज्जनों के स्वभाव चरित का वर्णन कर रहे हैं ग्रंथकार हिंदी व्याख्या प्रदानम सत्पात्र में धन आदि का वितरण प्रसन्नम गुप्त होना गृहम घर को उपगते आने पर अतिथि के संभ्रम विधि सत्कार करना प्रियम अभिष्ट को कृत्वा करके मौनम मौन रहना अर्थात दूसरे के हित को करके उसका प्रचार न करना अपिच और भी सदस्य सभा में उपकृते उपकार का कथनम कथन करना अर्थात सभी के सामने अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को बतलाना लक्ष्म्याम संपत्ति होने पर अनुत्सेक गर्व न करना पर कथा दूसरे के चरित का कथन अनभिभव गंधा लेश मात्र भी निंदा से युक्त न होना इदम यह विषमम कठोर असिधारा व्रतम तलवार के धार के समान नियम सताम सज्जनों का केन किसके द्वारा उद्दिष्टम उपदिष्ट है अर्थात किसी के द्वारा नहीं हिंदी अनुवाद गुप्त दान देना घर में आए हुए का सत्कार करना भलाई करके भी चुप रहना और भी सभा में उपकार को बतलाना संपत्ति होने पर गर्व न करना दूसरे के चरित के कथन में निंदा न करना यह सब कठोर तलवार के धार के समान नियम सज्जनों का किसके द्वारा उपदिष्ट है विमर्श सज्जन दान देकर भी उसका प्रचार नहीं करते हैं घर में आए हुए अतिथि का सत्कार करते हैं दूसरे के उपकार को करके भी उसका प्रचार नहीं करते हैं और भी सभा में अपने प्रति दूसरे के द्वारा किए गए उपकार का प्रचार करते हैं संपत्ति होने पर भी गर्व नहीं करते हैं दूसरे के चरित के कथन में निंदा नहीं करते हैं सज्जनों के यह नियम तलवार के धार के समान अत्यंत क्षीण है इन नियमों के पालन के लिए किसी ने भी उपदेश नहीं दिया बल्कि ये सज्जनों के स्वभाव सिद्ध हैं श्लोक करे श्लाघ्यस्त्याग शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजय भुजयोर्वीर्यमतुलं हृदि स्वच्छा वृत्ति श्रुतमधिगतं च श्रवणयो विना प्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनम् इदम्। प्रसंगः: ऐश्वर्येण विनापि प्रकृतिमहतां पुरुषाणां मण्डनम् अस्ति, दर्शयति ग्रन्थकारः। अन्वयः: करैश्लाद्यः त्यागः, शिरसि गुरुपादप्रणयिता, मुखे सत्यावाणी, भुजयो विजयी अतुलं वीर्यं, हृदि स्वच्छावृत्तिः, श्रवणयोः च अधिगतं श्रुतम्, इदम् ऐश्वर्येण विना अपि प्रकृतिमहतां मण्डनं। व्याख्या: करे हस्ते श्लाघ्य प्रशंसनीयः, त्यागः दानं, शिरसि मस्तके गुरुपादप्रणयिता, पूज्यजनचरणानुरागः, मुखे वदने सत्यारिता, वाणी वाग्, भुजयो वाह्। बाहो विजयी जयशीलम् अतुलम्, श्रवणयोः च कर्णयोश्च अधिगतम् ज्ञातम् श्रुतम् शस्त्रम्, इदम् एतत् पूर्वोक्तम् ऐश्वर्येण विभूत्या विना अपि विनैव प्रकृतिमहताम् स्वभावोन्नतानाम् सज्जनानामित्यर्थः, मण्डनम् आभूषणम् अस्तीति शेषः। सरलार्थ: हस्ते प्रशंसनीयम् दानम्, मस्तके पूज्यजन चरणानुरागः, वदने रितम् वचनम्, बाहो जयशीलम् अनूपम् बलम्, हृदये निर्मलो भावः, कर्णयोश्च ज्ञातम् शास्त्रमेतद् विभूत्या विनैव सज्जनानां भूषणम् अस्ति। टिप्पणी: गुरुपादप्रणयिता गुरोः पादौ गुरुपादौ, तयोः प्रणयी गुरुपादप्रणयी, तस्य भावः गुरुपादप्रणयिता, प्रकृतिमहतां प्रकृत्या महान्तः प्रकृतिमहान्तस्तेषां, श्लोके अस्मिन् शिखरिणी वृत्तं, लक्षणं यथा रसः रुद्रः छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी इति अपि चात्र विभावना अलंकारस्थ लक्षणम् यथा विभावना विना हेतुम कार्योत्पत्तिर उच्यते इति हिंदी प्रसंग ऐश्वर्य के बिना भी सज्जनों के अलंकार हैं, इसी बात का प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रंथकार इति हिंदी व्याख्या। करे हाथ में श्लाघ्य प्रशंसनीय, त्यागह दान, शिरसि मस्तक पर गुरुपाद प्रणयिता, गुरुजनों के चरणों पर किया गया अनुराग, मुखे मुख में सत्या सत्य वाणी वचन, भुजयो बाहुओं में विजयी विजयी प्रदान करने वाला अतुलम तुलना न की जा सकने वाला वीर्यम बल, हृदय हृदय में स्वच्छा निर्मल वृत्ति भाव च तथा श्रवणयो कानों में अधिगतम जाना गया श्रुतम शास्त्र, इदम यह ऐश्वर्येण विना विभूति के बिना अपि भी प्रकृति महताम स्वभाव से बड़े पुरुष का मंडनम आभूषण है। हिंदी अनुवाद: हाथ में प्रशंसनीय दान, मस्तक पर गुरुजनों के चरणों में किया गया अनुराग, मुख में सत्य वचन, बाहुओं में विजय प्रदान करने वाला तुलना न की जा सकने वाला बल, हृदय में निर्मल भाव तथा कानों में जाना गया शास्त्रीय ऐश्वर्य के बिना भी स्वभाव से बड़े पुरुष का आभूषण है। श्लोक: संपत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पल कोमलं, आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम्। प्रसंग: इदानीमापत्सु संपत्सु च सज्जनानां चित्तवृत्ति स्वरूपं निरूपयति। ग्रंथकार: अन्वयः: महतां चित्तं संपत्सु उत्पल कोमलं, आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम्। व्याख्या: महता महापुरुषाणां सज्जनानामित्यर्थः चित्तं मनः, संपत्सु विभवेषु उत्पल कोमलं कमलमृदुलं, आपत्सु च विपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशं, विशाल पर्वत प्रस्तर समूह कठिनं भवतीति शेषः। सरलार्थ: महापुरुषाणां मनोविभवेषु कमलमृदुलं, विपत्सु च विशाल पर्वत प्रस्तर समूह कठिनं भवति। टिप्पणी: उत्पल कोमलम उत्पल इव कोमलम उत्पल कोमलम, कर्मधारय: महाशैल शिला संघात कर्कशम, महान चासौ शैलह महाशैलह, तस्य शिला महाशैल शिला, तासाम संघात महाशैल शिला संघातः। षष्ठी तत्पुरुष: महाशैल शिला संघातः इव कर्कशम, महाशैल शिला संघात कर्कशम, कर्मधारय: श्लोके अस्मिन् अनुष्टुम वृत्तम लक्षणम यथा, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। अत्रोपमालंकारो विषमालंकारो अप्रस्तुत प्रशंसा च उपमालंकारो यथा साम्यम वाच्य वैधर्म्यम वाक्यैक्य उपमाद्वयोः इति विषमालंकारो यथा गुण क्रियेवा चेत्स्याताम वृद्धो विरुद्धे हेतु कार्ययोः यद्वारब्धस्य वैकल्पम् नर्थस्य च संभवः विरूपयोः संघटना या च तद्विषयं मतम् इति अप्रस्तुत प्रशंसालंकारो यथा क्वचित् विशेष सामान्यात् सामान्यं वा विशेषतः कार्यानिमित्तं कार्यञ्च हेतुरथ समात्समं अप्रस्तुता प्रस्तुत छेद गम्यते पंचधा ततः अप्रस्तुत प्रशंसा स्यात्। हिंदी प्रसंग। जब संपत्ति तथा विपत्ति के समय विद्यमान महापुरुषों की चित्त वृत्ति के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। ग्रंथकार। हिंदी व्याख्या। महता महापुरुषों का चित्तम मन संपत सुसंपत्ति के समय उत्पल कोमलम कमल के समान कोमल च तथा आपत्सु विपत्ति के समय महाशैल शिला संघात कर्कशम बड़े पर्वत की चट्टानों के समूह के समान कठोर होता है। हिंदी अनुवाद। महापुरुषों का चित्त संपत्ति के समय कमल के समान कोमल तथा विपत्ति के समय बड़े पर्वत की चट्टानों के समूह के समान कठोर होता है। श्लोक। संतप्तायसि संतिप्तस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्र स्थितं राजते स्वात्यां सागर शुक्ति मध्य पतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायणाधम मध्य मोक्तमुत्त मगुडः संसर्गतो जायते। प्रसंगः। प्रायणाधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतः जायते इत्यादुहरण मुखेनाः संतप्तायसीति अन्वयः। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसः नाम अपि न जायते तत एव नलिनी पत्र स्थितं मुक्ताकारतया राजते तत स्वात्यां सागर शुक्ति मध्य पतितं मौक्तिकं जायते प्रायण अधम मध्यम उत्तमं गुणः संसर्गतः जायते। व्याख्या। संतप्तायसि उत्तप्त लौहे अग्नितप्ते लौह इत्यर्थ संस्थितस्य वर्तमानस्य पतितस्येत्यर्थः पयसः जलस्य नाम अपि नामधेयम् अपि सत्तापित्यर्थः न ज्ञायते नावगम्यते तत एव जलमेव नलिनीपत्रस्थितं कमलपर्णस्थं तस्सत् मुक्ताकारतया मौक्तिक स्वरूपेण राजते शोभते तत जलम स्वात्याम स्वाति नक्षत्रे सागर शुक्ति मध्य पतितम समुद्र मुक्ता स्फोटांतराल गतम सत मौक्तिकम मुक्ता रत्नम जायते उत्पद्यते प्रायण बाहुलेन अधम मध्यम मोत्तम गुणः नीच मध्यम श्रेष्ठ गुणः पुरुषः संसर्गतः संबंध वशात जायते भवति। सरलार्थः। अग्नि तप्ते लौहे पतितस्य जलस्य सत्तापि नावगम्यते जलमेव कमलपत्रस्थं सतमौक्तिक स्वरूपेण शोभते तज्जलमेव स्वाति नक्षत्रे समुद्र मुक्ता स्फोटांतरालगतम सत मुक्ता रत्नमुत्पद्यते बाहुलेन नीच मध्यम श्रेष्ठ गुणपुरुष संबंध वशाद भवति। टिप्पणी। संतप्तायसि संतप्त चासौ अयः संतप्तायस्तस्मिन् नलिनीपत्र स्थितं नलिन्याः पत्रं नलिनीपत्रम् तस्मिन् स्थितं नलिनीपत्र स्थितं मुक्ताकारतया मुक्ताया आकार इव आकारो यस्यासौ मुक्ताकारं तस्य भावस्तया बहुब्रीहि सागर शुक्ति मध्य पतितं सागरस्य शुक्तिः सागर शुक्तिः तस्या मध्यम सागर शुक्ति मध्यम तस्मिन् पतितं सागर शुक्ति मध्य पतितं अधम मध्यमोत्त गुणः अधमाश्य मध्यमाश्य उत्तमाश्चेति अधमध्यमोत्तमाः अधमध्य उत्तमाः गुणाः यस्य स अधम मध्य श्लोके अस्मिन् शार्दूल विक्रीडितं वृत्तं लक्षणं यथा सूर्या स्वैर्मस जस्ततः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितं इति अपि चात्र यथा संख्यम अलंकारस्त लक्षणं यथा यथा संख्यम अनुदेश उद्दिष्टानां क्रमेण सत् तत् इति यथैकमेव जलम अग्नि तप्त लौह संसर्गात स्वसत्ता विहीनं भवति तदेव जलम पद्म पत्रगतं सत्तायुक्तं सदपि मूल्यहीनं मौक्तिकं भवति केवलं सत्तात्वेन मुक्तावत् शोभते न तु मुक्तात्वेन विपरिणमते परन्तु तदैव जलं स्वातिनक्षत्रे समुद्रशुक्ति मध्यगतं सत् मुक्ताफलं भवति तस्य सामान्यजलात्मकसत्ता मुक्तावेन विपरिणमते मते अत्र एकमेव जलम संसर्गात त्रिविधाम अवस्थां प्राप्नोति गुणः संसर्ग जायते यादृशः गुण संसर्गो भवति तादृशी गुणवान पुरुषो भवति गुणः त्रिविधो नीचः मध्यः श्रेष्ठश्च नीच गुण संपर्कात पुरुषो नीच गुणवान भवति मध्यम गुण संपर्का मध्यम गुणवान भवति श्रेष्ठ गुण संपर्काच श्रेष्ठ गुणवान भवति नीच गुणवतो न कापि सत्ता वर्तते समाजे च अमृत इव तिष्ठति मध्यम गुणवतः सत्ता वर्तते किंतु तस्य सन्मानम सर्वत्र न भवति स सामान्य जीवनम यापयति श्रेष्ठ गुणवान समाजे महान पुरुषो भवति तस्य पुरुषस्य सामान्य पुरुषात्मक सत्ता विपरिणमते महापुरुषत्वेन एकस्यैव पुरुषस्य गुणयोगात् त्रिविधा स्थितयो भवन्ति हिंदी प्रसंग प्राय अधम मध्यम तथा उत्तम गुण संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं इसी बात को उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं हिंदी व्याख्या संतप्तायसि गर्म हो लोहे पर संस्थितस्य गिरे हुए पयसह जल का नाम नाम अपि भी नहीं ज्ञायते जाना जा सकता है तत् एव वही जल नलिनी पत्र स्थितम कमल के पत्ते पर रहकर मुक्ता कारतया मोती के आकार से राजते शोभित होता है तत् वह जल स्वात्याम स्वाति नक्षत्र में सागर शुक्ति मध्य पतितम समुद्र की सीपी के बीच पड़कर मौक्तिम मोती जायते बन जाता है प्रायण प्राय अधम मध्यम उत्तम गुणः नीच मध्यम तथा श्रेष्ठ गुण संसर्गतः संसर्ग से जायते उत्पन्न होता है हिंदी अनुवाद गर्म लोहे पर गिरे हुए जल का नाम भी नहीं रह जाता है वही कमल के पत्ते पर रहकर मोती के आकार से शोभित होता है वह स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीपी के बीच पड़कर मोती बन जाता है प्रायः नीच मध्यम तथा श्रेष्ठ गुण संसर्ग से उत्पन्न होता है विमर्श जिस प्रकार एक ही जल आग से तपे लोहे के संसर्ग से अपनी सत्ता खो देता है वही जल कमल के पत्ते पर सत्ता में रहकर मोती की तरह शोभित होता है न कि मोती बन जाता है वह मूल्यहीन है किंतु वही जल स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीपी के बीच पड़कर मोती बन जाता है अपनी जल रूपी सत्ता का विपरिणाम मोती के रूप में हो जाता है वह मूल्यवान बन जाता है उसी प्रकार गुण संसर्ग से उत्पन्न होता है जिस गुण से संसर्ग होता है उसी गुण वाला पुरुष होता है गुण तीन प्रकार के होते हैं नीच मध्यम तथा श्रेष्ठ नीच गुण के संसर्ग से नीच गुण वाला होता है मध्य गुण के संसर्ग से मध्य गुण वाला होता है तथा श्रेष्ठ गुण के संसर्ग से श्रेष्ठ गुण वाला होता है नीच गुण वाले की सत्ता समाज में नहीं होती है अर्थात वह सामाजिक दृष्टि से मृत है मध्यम गुण वाले की सत्ता होती किंतु उसका सम्मान हृदय से कोई भी नहीं करता है समाज में वह सर्वत्र समादरणीय नहीं हो पाता है समाज में सामान्य पुरुष के समान जीवन यापन करता है किंतु श्रेष्ठ गुण वाला समाज में महान पुरुष होता है उसकी सामान्य पुरुषात्मक सत्ता का महापुरुष के रूप में विपरिणाम हो जाता है एक ही पुरुष की गुण के संसर्ग से तीन प्रकार की स्थिति होती है श्लोक प्रीणात यह सुचरितः पितरं च पुत्रो यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्र मापदि सुखे च समक्रियम या देत तत्त्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रसंगः जगति सत्पुत्रादि त्रयम् पुण्यकृतः लभन्ते इत्याह प्रीणातिति अन्वयः। यः सुचरितैः पितरम् प्रीणाति सः पुत्रः। यत् भर्तु हितम् इच्छति तत् एव कलत्रम्। यत् आपदि सुखे च समक्रियम् तत् मित्रम्। एतत् त्रयम् जगति पुण्यकृतः लभन्ते। व्याख्या यः पुरुषः सुचरितैः सदाचारः पितरं जनकं प्रीणाति संतोषयति सः उपर्युक्तः पुरुषः पुत्रः सुतः। कथ्यत इति शेषः यत् यन्मित्रम् आपदि दुखे विपत्तौ सुखे च संपत्तौ च समक्रियं तुल्यव्यापारं तत् उपर्युक्तं मित्रं मित्रं सुहृत् कथ्यत इति शेषः। एतत् इदं पूर्वोक्ति पुत्रादित्रयं त्रिसंख्याकं जगति लोके पुण्यकृतः सुकृतिनः लभन्ते प्राप्नुवन्ति। सरलार्थः यः पुरुषः सदाचारैः जनकं संतोषयति स एव सुतः कथ्यते। या पत्युः कल्याणं वाञ्छति सैव भार्या कथ्यते। यन्मित्रं दुःखे सुखे च तुल्यव्यापारं स्यात् तदेव मित्रं कथ्यते। इदं त्रयं लोके सुकृतिन् एव प्राप्नुवन्ति। टिप्पणी सुचरितैः सुष्ठुचरितानि सुचरितानि तैः कर्मधारयः समक्रियं समाक्रिया यस्य तत् बहुव्रीहि। श्लोके अस्मिन् वसन्ततिलिकावृत्तं लक्षणं यथा उक्ता वसन्ततिलिका तभजा जगौगः। सन्तुष्टिप्रदायकः पुत्रः कल्याणकारिणी भार्या सुखे दुःखे च संव्यापारं मित्रमेतत्त्रयं लोके सर्वे न प्राप्नुवन्ति। केचित् सुकृतिनः एव प्राप्नुवन्ति। एतत् त्रयं प्रायणे कत्र नोपलभ्यते तस्मादेव दुर्लभमेतत्त्रयं स्यात्। हिंदी प्रसंग जगत में संतुष्टि प्रदान करने वाला पुत्र कल्याणकारिणी भार्या तथा सुख दुख में समान रूप से साथ देने वाला मित्र ये तीन पुण्यवान व्यक्तियों को ही प्राप्त होने की बात बतला रहे हैं। ग्रंथकार हिंदी व्याख्या यह जो सुचरित है अच्छे आचरण से पितरम पिता को प्रीणाति प्रसन्न करता है सह वह पुत्रह पुत्र है। यत जो भर्तुः पति के हितम कल्याण को इच्छति चाहती है तत वह कलत्रम भार्या है। यत जो आपद विपत्ति में च तथा सुखे सुख में समक्रियम एक सा व्यवहार करता है तत वह मित्रम मित्र है। एतत इन त्रयम तीनों को जगति संसार में पुण्यकृतः पुण्य करने वाले लभन्ते प्राप्त करते हैं। हिंदी अनुवाद जो अच्छे आचरणों से पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र है। जो पति के कल्याण को चाहती है वही पत्नी है। जो विपत्ति में तथा सुख में एक सा व्यवहार करता है वही मित्र है। इन तीनों को पुण्य करने वाले प्राप्त करते हैं। विमर्श पुत्र तो अनेक होते हैं किंतु वास्तविक वही पुत्र कहलाने योग्य है जो अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को प्रसन्न कर देता है। उसी प्रकार मित्र भी अनेक होते हैं किंतु विपत्ति में साथ देने वाले कम होते हैं। सुख तथा दुख में जो एक सा व्यवहार करे वही वास्तविक मित्र कहलाने योग्य है। उसी प्रकार भार्या भी प्रत्येक व्यक्ति की हो सकती है किंतु जो पति के कल्याण की कामना करती है वही भार्या कहलाने योग्य है। ये तीनों पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकते हैं। उनमें भी ऐसे व्यक्ति बिरले हैं जो इन तीनों को एक साथ प्राप्त कर सके। श्लोक एको देवः केशो वो शिवो वा एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एको वासः पत्तने वा वने वा एका भार्या सुंदरी वा दरी वा। प्रसंगः जगत यत्ते यथेक्षं भोगयोग योर मार्गयोर मध्ये यह को अन्यतरो ग्राह्य इति निर्देशति ग्रंथकारः। एक इति अन्वय केशवः वा शिवः वा एक देवः भूपति वा यति वा एकं मित्रं पत्तने वा वने वा एकः वा सः सुंदरी वा दरी वा एका ही भार्या। व्याख्या केशवः वा विष्णुर्वा शिवः वा शंकरो वा एकः देवः एक परमेश्वरः केशव शिव योर मध्ये यः को प्यंतर इत्यर्थ भवेदिति शेष भूपतिः वा राजा वा यति वा विरक्तो योगी वा एकम ही मित्रम एकमेव सुहृत् भूपतित्यो मध्ये यः को प्यंतर इत्यर्थ भवेदिति शेष पत्तने वा नगरे वा वने वा अरण्ये वा एकः वासः एको निवासः पत्तन वनयोर मध्ये यः कोप्यंतर इत्यर्थ भवेदिति शेष सुंदरी वा रमणी वा दरी वा कंदरा वा एका ही भार्या एकैव पत्नी सुंदरी दयोर मध्ये या काप्यान्यतरेत्यर्थ भवेदिति शेष भोगयो गयोर मार्ग योर मध्ये यः कोप्यान्यतरो ग्राह्यो भवेदित्यर्थ सरलार्थः विष्णुर्वा शंकरो वैकः परमेश्वरो भवेत् राजा वा विरक्तो योगी वैकम सुहृत् भवेत् नगरे वारण्ये वैको निवासो भवेत् रमणी वा कंदरा वैका पत्नी भवेत्। टिप्पणी श्लोके अस्मिन् शालिनी वृत्तम लक्षणम यथा शालिन्य युक्ता तौ तगौ गाब्धि लोकः इति अत्र द्विविधो मार्गो निर्दिष्टोऽस्ति तद्यथा भोगिनां कृते भोगमार्गो योगिनां कृते तु योगमार्ग एव भोगिनामुपास्यो देव सर्वेश्वरवान् भोगप्रदः परम भोगी विष्णुरस्ति योगिनामुपास्यो देवस्तु पूर्ण वैराग्यवान् योगप्रदः परम योगी शिवोस्ति भोगिनां मित्र मैश्वरशाली भोग्यपदार्थयुक्तो राजा भवति योगिनां तु वैराग्यवान् योग पदार्थ युक्तो योगी भवति भोगिनां निवास स्थलं नगरं भवति योगिनां तु वनमेव भोगिनां भार्या काचित् सुंदरी भवति योगिनां तु पर्वतस्य कन्दरा वर्तते। इत्थं भोगयोग योर मध्ये यः कोप्यन्यतरो ग्राह्यो भवेदिति हिंदी प्रसंग। संसार में अपनी इच्छा के अनुसार भोग तथा योग दोनों मार्गों में से किसी एक ही मार्ग का ग्रहण करना चाहिए, इसी बात का निर्देश कर रहे हैं ग्रंथकार। एक इति हिंदी व्याख्या वा चाहे केशवः विष्णु वा या शिवः शंकर एक एक देवः परमेश्वर होना चाहिए वा चाहे भूपति ही राजा वा या यति ही योगी एकम एक ही ही मित्रम मित्र होना चाहिए वा चाहे पत्तने नगर में वा या वने जंगल में एकह एक वासह निवास होना चाहिए वा चाहे सुंदरी सुंदरी वा या दरी गुफा एका एक ही भार्या पत्नी होनी चाहिए अर्थात भोग तथा योग मार्गों में से किसी एक का ग्रहण करना चाहिए। हिंदी अनुवाद। चाहे विष्णु हो या शंकर एक ही परमेश्वर, चाहे राजा हो या योगी एक ही मित्र, चाहे नगर में हो या वन में एक ही निवास तथा चाहे सुंदरी हो या गुफा एक ही पत्नी होनी चाहिए। विमर्श। यहाँ पर दो प्रकारों के मार्गों का निर्देश किया गया है, योग मार्ग तथा भोग मार्ग। भोग मार्ग भोगियों के लिए तथा योग मार्ग योगियों के लिए है। भोगियों का उपास्य देव सारे ऐश्वर्य से विभूषित भोग का प्रदान करने वाला परम भोगी विष्णु है, जबकि योगियों का उपास्य देव पूर्ण रूप से विरक्त योग को प्रदान करने वाले योगी राज शिव है। भोगियों का मित्र ऐश्वर्यशाली सारे भोग्य पदार्थों से युक्त राजा होता है, जबकि योगियों का विरक्त योग पदार्थों से युक्त योगी होता है। भोगियों का निवास स्थान नगर होता है, जबकि योगियों का निवास स्थान जंगल होता है। भोगियों की पत्नी सुंदरी होती है, जबकि योगियों की गुफा है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को भोग मार्ग तथा योग मार्ग दोनों में से किसी एक मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। दोनों मार्ग विपरीत होने से एक साथ अवलंब्य नहीं बन सकते हैं। श्लोक। नम्रत्वे नोनन्न मन्तः परगुण कथनैः स्वान गुणान ख्यापयन्तः स्वार्थान संपादयन्तो वितत पृथुतरारम्भ्य यत्नाः परार्थे शान्त्यै वाक्षेप रूक्षाक्षर मुखर मुखान दुर्जनान दूषयन्तः संतः साश्चर्य चर्या जगति बहुमताः कस्य नाभ्यर्चनीयाः प्रसंगः। नम्रतादिगुणविभूषिताः सज्जनाः लोके सर्वत्र पूजनीया भवन्ति त्याः नम्रत्वेनेति अन्वयः नम्रत्वेन उन्नमन्तः परगुणकथनैः स्वानगुणान् ख्यापयन्तः परार्थे विततपृथूतरारम्भयत्नाः स्वार्थान् सम्पादयन्तः आक्षेपरुक्षाक्षरमुखर मुखान् दुर्जनान् क्षान्त्या एव दूषयन्तः साश्चर्यचर्या बहुमताः सन्तः जगति कस्य न अभ्यर्चनीयाः व्याख्या नम्रत्वेन विनयेन उन्नमन्तः अभ्युदयं प्राप्नुवन्तः परगुणकथनैः अन्यसौजन्यादिवर्णनैः स्वान् स्वकीयान् गुणान् सौजन्यादीन् ख्यापयन्तः प्रकटयन्तः परार्थे अन्यप्रयोजने विततपृथूतरारम्भयत्ना विस्तृतविशालोपक्रमप्रयत्नाः स्वार्थान् स्वकीयप्रयोजनानि सम्पादयन्तः साधयन्तः आक्षेपरुक्षाक्षरमुखरमुखान् निन्दाकठोरवर्णवाचालवदनान् दुर्जनान् दुष्टपुरुषान् शान्त्या एव सहनशीलतयैव दूषयन्तः दोषयुक्तान् कुर्वन्तः साश्चर्यचर्याः आश्चर्यकारकव्यापारः बहुमताः लोकमान्याः सन्तः सज्जनाः जगति लोके कस्य कस्य जनस्य न अभ्यर्चनीयाः न पूजनीयाः आपि तु सर्वस्य पूजनीयाः सन्तीत्यर्थः सरलार्थः विनयेनाभ्युदयं प्राप्नुवन्तः अन्यसौजन्यादिगुणवर्णनैः स्वकीयान् सौजन्यादीन् गुणान् प्रकटयन्तः अन्यप्रयोजने विस्तृतविशालोपक्रमप्रयत्नाः सन्तः स्वकीयप्रयोजनानि साधयन्तः निन्दाकठोरवर्णवाचालवदनान् दुष्टपुरुषान् सहनशीलतयैव दोषयुक्तान् कुर्वन्तः आश्चर्यकारकव्यापारः लोकमान्याः सज्जनाः लोके कस्य जनस्य न पूजनीयाः सन्ति अपि तु सर्वस्य पूजनीयाः सन्तीत्यर्थः टिप्पणी परगुणकथनैः परेषां गुणाः परगुणाः तेषां कथनानि परगुणकथनानि तः षष्ठी तत्पुरुष परार्थे परेषामर्थः परार्थः तस्मिन् विततपृथूतरारम्भयत्नाः पृथुतर आरम्भः येषां ते पृथुतरारम्भाः पृथुतरारम्भाश्च ते यत्नाः पृथुतरारम्भयत्नाः कर्मधारय विदताः पृथुतरारम्भयत्नाः येषां ते विततपृथुतरारम्भयत्नाः स्वार्थान् स्वस्य अर्था स्वार्थास्तान् आक्षेपरुक्षाक्षरमुखरमुखान् आक्षेपेण रुक्षाणि आक्षेपरुक्षाणि आक्षेपरुक्षाणि च तानि अक्षराणि आक्षेपरुक्षाक्षराणि कर्मधारय तैः मुखराणि मुखानि येषां ते आक्षेपरुक्षाक्षरमुखास्तान् बहुब्रीहि साश्चर्यचर्याः आश्चर्येण सहिता साश्चर्या बहुब्रीहि साश्चर्याचर्या येषां ते साश्चर्यचर्याः बहुमता बहुनां मताः बहुमता षष्ठी तत्पुरुष श्लोके अस्मिन् श्रग्धराः वृत्तं लक्षणं यथा नैर्यानां त्रिमुनिनयुता श्रग्धरा कीर्तितेयम् इति अपि च नम्रत्वेनोन्नमन्तः इत्यत् विरोधाभासोऽलङ्कारस्तलक्षणं यथा विरोधः सो अविरोधे अपि विरुद्धत्वेन सद्वचः इति हिन्दीप्रसङ्ग नम्रतादि गुणों से विभूषित सज्जन लोक में सबके पूजनीय होते हैं इसी बात को बतला रहे हैं ग्रंथकार नम्रत्वेनेति हिंदी व्याख्या नम्रत्वेन नम्रता से उन्नमन्तः उन्नति को प्राप्त करते पर गुण कथने दूसरों के गुण के कथन के द्वारा स्वान अपने गुणान गुणों को ख्यापयन्तः प्रकटित करते हुए परार्थे दूसरों के प्रयोजन में वितत पृथुतरारम्भयत्नाः फलय हुए विशाल उपक्रमों का प्रयत्न करते हुए स्वार्थान अपने प्रयोजनों को संपादयंतः संपादित करते हुए आक्षेप रुक्षाक्षर मुखर मुखा, निंदा के कठोर अक्षरों से वाचाल मुख वाले दुर्जनान दुर्जनों को शांत्या एव क्षमा के द्वारा ही दुष्यंत दोष युक्त करते हुए साश्चर्यचर्या आश्चर्युक्त आचरण वाले बहुमतः लोकों के पूजनीय संतः सज्जन लोक जगत संसार में कस किसके पूजनीय पूजनीय न नहीं है अर्थात सबके पूजनीय है। हिंदी अनुवाद। नम्रता से उन्नति को प्राप्त करते हुए दूसरों के गुणों के कथन द्वारा अपने गुणों को प्रकटित करते हुए दूसरों के प्रयोजन में फैले हुए विशाल उपक्रमों का प्रयत्न करते हुए अपने प्रयोजनों को संपादित करते हुए निंदा के कठोर अक्षरों से वाचाल मुख वाले दुर्जनों को क्षमा के द्वारा ही दोष युक्त करते हुए आश्चर्य युक्त आचरण वाले लोक के पूजनीय सज्जन संसार में किसके पूज्य नहीं हैं।